आप हैं SBS हिंदी के साथ।
बलात्कार के आरोप में फंसे कैबिनेट मंत्री से चुप्पी तोड़ने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था लगातार दूसरी तिमाही में 3% के पार और भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 1.5 करोड़ के पास। अब खबरें विस्तार से। एक ऐतिहासिक बलात्कार के आरोप में फंसे कैबिनेट मंत्री से उम्मीद है कि आज वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और बयान देंगे। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि इस व्यक्ति ने आरोपों को सख्ती से खारिज किया है और उसने मानहानि के वकील पीटर बार्टलेट से कानूनी सलाह ली है और अब उम्मीद है कि वो खुद को बेगुनाह घोषित करेगा। आपको बता दें कि न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने जून 2020 में महिला की खुदकुशी के बाद जांच बंद कर दी थी। महिला के वकील माइकल ब्रेडले ने 9 नेटवर्क को बताया कि ये जरूरी है कि मंत्री आरोपों का जवाब दे।
I hope that he'll directly address the allegation and we'll all hear what his position on that is, and then that will sort of dictate what the next step should be. I also hope that he or someone from the government at some point says something acknowledging the humanity of my client, which has sadly been absent so far.
लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डायसन हेडन के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच की तरह इस मामले को सुलझाने की बात कही। दिसंबर की तिमाही में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में 3.1% की वृद्धि हुई, जिसने पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से आई मंदी से मजबूती से वापसी की है। परिणाम उम्मीद से ज़्यादा मजबूत हैं, जिसमें सितंबर तिमाही में GDP 3.4% रहा था। फेडरल कोषाध्यक्ष जॉश फ्रेडनबर्ग का कहना है कि ये इतिहास में पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया में 3% से अधिक आर्थिक वृद्धि के 2 लगातार क्वार्टर रिकॉर्ड किए गए हैं।
The Australian economy has recovered 85% of its COVID-induced fall, 6 months earlier and twice as fast as we expected in last year's October budget. This is a very encouraging performance from the Australian economy, given the economic abyss that we were staring into.
ऑस्ट्रेलिया के रक्षा प्रमुख एंगस कैम्बल ने प्रथम वर्ष के महिला और पुरुष कैडेटों को कहा कि वो देर रात को बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसा करने से वो गलत लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैडेट्स को 4A यानी कि अल्कोहल, आउट आफ्टर मिडनाइट, अलोन एंड अट्रैक्टिव में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यौन हिंसा के शिकार समूहों का समर्थन करने वाले लोगों और कुछ राजनेताओं ने उनकी टिप्पणियों को पुरानी और विक्टिम ब्लेमिंग बताया है। लेबर नेता एंथनी एल्बनीजी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों के व्यवहार को बदलना होगा।
We need to change the behavior of men. Women aren't the problem here, and their behaviour and going out at night. We need to change the behaviour of men in all facets of society. Sexual violence is a scourge in our community, and men have to take responsibility for changing their action. People should feel safe.
फेडरल कोर्ट में मेजॉरिटी रूलिंग के साथ पूर्व लिबरल सेनेटर डेविड लायलहम की ग्रीन्स सेनेटर सारा हेनसंग यंग के खिलाफ $1,20,000 की मानहानि क्षति को खारिज कर दिया गया है। सेनेटर हेनसंग यंग ने अपने पूर्व उच्च सदन के सहकर्मी पर उन टिप्पणियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया जो पुरुषों को गहराई से नापसंद करती हैं। लिबरल सेनेटर ने इस आधार पर अपील की कि उन्होंने जो कहा वो संसद में विशेषाधिकार के तहत आता है। सेनेटर हेनसंग यंग का कहना है कि वो इस फेडरल कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं।
दिस इज अ विक्ट्री फॉर ऑल वुमेन, अ विक्ट्री फॉर ऑल वुमेन हु डिजर्व टू बी सेफ इन देयर वर्कप्लेसेस, रिस्पेक्टेड इन आवर कम्युनिटीज, इन देयर स्कूल्स एंड देयर प्लेसेस ऑफ वर्क। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट्स हार्ड टू स्टैंड अप, इट्स हार्ड टू कॉल आउट the bad behavior of some men.
लिबरल एमपी जॉन सिदोटी ने न्यू साउथ वेल्स मंत्रालय से इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन के सामने पेश होने के बाद पद छोड़ दिया है। इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन आरोपों की जांच करने के लिए 29 मार्च को एक सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए तैयार है। लिबरल एमपी पर अपने इनर वेस्टर्न सिडनी इलेक्टोरेट के सबब 5 डॉक पर गैरकानूनी एडवांस्ड डेवलपमेंट्स की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि लिबरल एमपी सिदोटी पर अनुचित रूप से दूसरों को उनके आधिकारिक कार्यों में प्रभावित करने, सार्वजनिक विश्वास को भंग करने और मौद्रिक खुलासे करने में विफल रहने के आरोप हैं। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ग्लैडिस बेरेज़िक्लिन का कहना है कि वो पद छोड़ने के उनके फैसले को स्वीकार करती हैं।
I spoke to him briefly before this press conference. He offered his resignation from the ministry, which I accepted. And on that basis, I will be appointing a new minister in the near future.
अब खबरें भारत से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जताते हुए एक बार फिर कहा कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बेरोजगारी बहुत अधिक है और भारत का अनौपचारिक क्षेत्र जर्जर स्थिति में है।
टेम्पररी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक टू पेपर ओवर द क्रेडिट प्रॉब्लम्स कैन नॉट ब्लाइंड अस टू द लूमिंग credit crisis ahead that could affect the small and medium sector. Unemployment is high and the informal sector is in shambles, a crisis precipitated by the ill-considered demonetization decision taken in 2016.
भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 6 मार्च को आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर स्वराज भारत पार्टी के प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव ने कहा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी कि 8 मार्च को आंदोलन की बागडोर महिलाओं को दी जाएगी।
आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है। 18 जनवरी को भी और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं, हर मोर्चे पे, हर धरने पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे, उनकी आवाज है।
भारत में कोरोना वायरस टीकाकरण तेजी से चल रहा है। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 1,48,00,000 लोगों को भारत में वैक्सीन लग चुका है।
टोटल डोजेज विच हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टिल 1 PM टुडे आर 1,48,00,000 प्लस। Out of this, 2,08,000 doses have been given to people who are 45 to 59 with comorbidities and 60 plus. 67,00,000 doses have been given to healthcare workers as first dose. 25,98,000, almost 26,00,000 doses have been given to healthcare workers as their second dose. And frontline workers, 53,00,000 plus doses have been given to frontline workers.
और अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को एक खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 57.32 रुपए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट थी। अब खबरें खेल जगत से। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट और T20 सीरीज में न खेलने का फैसला किया है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI से आराम लेने की इजाज़त मांगी थी, जिसे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि बुमराह की शादी होने वाली है और इसके लिए ही तेज गेंदबाज ने BCCI से अवकाश मांगा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2021 के आगामी टूर्नामेंट के आयोजन स्थलों में मोहाली को जगह नहीं दिए जाने पर हैरानी जताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई से अपने फैसले पर पुनर्विचार की अपील की। मुख्यमंत्री ने साथ ही आश्वासन दिया कि कोविड-19 महामारी के बीच उनकी सरकार खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम करेगी। अब डाल लेते हैं मौसम पर नजर और अब बात करते हैं कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आसमान में बादल रहेंगे और दिन में बारिश के साथ तूफान के आने की संभावना है। अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बढ़िया धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में आंशिक बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की, जहां आसमान साफ रहेगा और दिन में बढ़िया धूप खिली रहेगी। यहां के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की, जहां आसमान में आंशिक बादल तो जरूर रहेंगे लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में दिन में बारिश की संभावना रहेगी, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस। डार्विन के आसमान में बादल रहेंगे, यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां मौसम ने करवट बदल ली है और मौसम गर्म होने लगा है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।